पेज नंबर 106, चित्रलेखा, कौन लक्ष्य? सुकन्या, जिसको भी समझो। चित्रलेखा पूछती है कि नारी का लक्ष्य कौन सा है। भटक भटक कर अनेक स्थानों पर रस पान करना, या एक ही स्थान पर बंध कर रस लेना। सुकन्या तब कहती है कि तुम इन दोनों में से जिसे भी उचित समझो अपना लक्ष्य बना लो। चित्रलेखा, मैं तो तृषित नहीं हूँ, न तो देवता ही व्याकुल मेरे प्रसन्न प्राणों के। दृष्टि जहाँ तक भी जाती है मुझे यही दिखता है, जब तक खिलते फूल वायु लेकर सुगंध चलती है, खिली रहूँगी मैं, शरीर में सौरभ यहीं रहेगा। शब्दार्थ, सौरभ यानी सुगंध, यहाँ सौंदर्य से भी तात्पर्य है। व्याख्या, मुझे जीवन में किसी प्रकार की प्यास नहीं है, मेरे प्रसन्न प्राणों के अंतर्देवता दुखित नहीं है। जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है मुझे तो ऐसा दिखाई देता है कि जब तक फूल खिलते हैं हवा सुगंध लेकर चलती है, मैं इसी प्रकार खिली रहूँगी, मुझमें ऐसा ही सौंदर्य रहेगा, यही यौवन रहेगा। सुकन्या, सो केवल इसलिए कि तुम अप्सरा सिद्ध नारी हो, विगलित कभी कहाँ होता यौवन तुम अप्सरियों का। पर यौवन है मात्र क्षण छलना इस मर्त्य भुवन में, ले उसका अवलंब मानवी कब तक जी सकती है। शब्दार्थ, विगलित यानी नष्ट, छलना यानी धोखा प्रवंचना, मर्त्य भुवन यानी मर्त्य लोक, अवलंब यानी सहारा आश्रय। व्याख्या, ऐसा तुम्हें इसलिए लगता है कि तुम अप्सरा हो, स्वयं सिद्ध हो, समर्थ हो। तुम परियों का यौवन कभी नष्ट नहीं होता, किंतु इस पार्थिव मर्तलोक में तो यौवन केवल मात्र छलना है, धोखा है। उसका सहारा लेकर मानव नारी कब तक जीवित रह सकती है। भावार्थ यह है कि पृथ्वी के प्राणियों का यौवन क्षणिक है और उसका वृद्धावस्था में बदल जाना निश्चित है। अप्सरियां जो करें किंतु हम मर्त योषिताओं के जीवन का आनंद कोश केवल मधुपूर्ण हृदय है। हृदय नहीं त्यागता हमें यौवन के तज देने पर, न तो जीर्णता के आने पर हृदय जीर्ण होता है। शब्दार्थ, योषिता यानी स्त्री, आनंद कोश यानी आनंद का घर, जीर्णता यानी मलिनता, शथलता। व्याख्या, अप्सरियां जो कुछ भी करें उन्हें सब संभव है, लेकिन हम धरती की ललनाओं के जीवन का आनंद निधि केवल रसपूर्ण हृदय ही है। हमारा हृदय हमें यौवन के चले जाने पर नहीं छोड़ता, और न ही शरीर में दुर्बलता आने पर हमारा हृदय दुर्बल होता है। एक दूसरे के उरमे हम ऐसे बस जाते हैं, दो प्रसून एक ही वृंत पर जैसे खिले हुए हों। फिर रह जाता भेद कहाँ पर शिशिर घाम पावस का, एक संग हम युवा संग ही संग वृद्ध होते हैं। मिलकर देते खेप अनुद्धत मन विभिन्न ऋतुओं को, एक नाव पर चढ़े हुए हम उदभिपार करते हैं। शब्दार्थ, उर यानी हृदय, वृंत यानी डंठल टहनी, शिशिर यानी सर्दी, घाम यानी धूप गर्मी, पावस यानी वर्षा, खेप यानी गंवाना व्यतीत करना, अनुद्धत मन यानी शांत चित्त, उदधि यानी सागर। व्याख्या, हम मानव मानवियाँ एक दूसरे के हृदय में इस प्रकार बस जाते हैं मानो एक ही टहनी पर दो फूल खिले हुए हों। फिर दोनों में सर्दी गर्मी तथा वर्षा का भेद नहीं रहता, एक ही साथ हम जवान और एक ही साथ बूढ़े होते हैं। शांत चित्त से अगणित ऋतुओं को सुख से काट देते हैं, एक ही नौका का चढ़कर जीवन सागर को पार करते हैं। सच्चे प्रेमियों के हृदय मिल जाने पर उनमें भेद की लकीर मिट जाती है। अप्सरियां उद्विग्न भोगती रस जिस चिरी यौवन का, उससे कहीं महत सुख है जो हमें प्राप्त होता है, निश्चल शांत विनम्र प्रेम भर उड़के उत्सर्जन से। शब्दार्थ, चिर यानी अमर दीर्घकालीन, महत यानी महान, उत्सर्जन यानी समर्पण। व्याख्या, परियां अशांत चित्त होकर अपने शाश्वत यौवन के जिस रस को भोगती हैं, उनके उन रस से कहीं अधिक सुख हमें प्रेम भरे हृदय के छल रहित शांत नम्र समर्पण से प्राप्त होता है। चित्रलेखा, सचमुच यह सुख अप्रमेय है, मन ही नंद निलय है। क्षण भर पाकर हृदय दान जब उतना सुख मिलता है, तब कितना मिलता होगा यह सुख उन दंपतियों का जो सदैव के लिए हृदय उत्सर्जित कर देते हैं। किंतु सुकन्ये डरी नहीं तू जब तेरे स्पर्शन से मुनि सत्तम खंडित समाधि से कोपाकुल जागे थे। क्रुद्ध तापसों से तो अप्सरियां भी डर जाती हैं। शब्दार्थ अप्रमेय यानी अकथनीय, नंद निलय यानी आनंद का निकेतन, दंपतियों यानी स्त्री पुरुष का जोड़ा पति पत्नी, उत्सर्जित यानी न्योछावर समर्पित, स्पर्शन यानी स्पर्श, मुनि सत्तम यानी मुनि श्रेष्ठ, कोपाकुल यानी गुस्से से व्यग्र, तापस यानी तपस्वी। व्याख्या: वास्तव में यह धरती का सहज प्रेमजन्य सुख अवर्णनीय है। मन ही आनंद का कोष है। हृदय का क्षण भर के लिए भी समर्पण पाने से जब इतना सुख मिलता है, तब उन पति पत्नियों को कितना सुख मिलता होगा जो सदा के लिए अपना हृदय परस्पर समर्पित कर देते हैं। लेकिन सुकन्ये, जब तुम्हारे स्पर्श से च्यवन ऋषि समाधि खंडित कर क्रोध से व्याकुल होकर जाग उठे थे, तब तुम उनसे भयभीत नहीं हुई क्या? क्रोधित हुए तपस्वियों से तो हम अप्सराओं को भी डर लगता है। सुकन्या: डरी नहीं मैं, हाय चित्रलेखे, कौतूहल से ही मैंने तनिक पलक खींची थी ध्यान मग्न मुनिवर की, पर नयनों के खुलते ही उद्भासित रंध्र युगल से लगा अग्नि ही स्वयं फूट कर कढ़े चले आते हैं। और नहीं कुछ, एक ग्रास ने मुझे लील जाने को, रंच मात्र भी हिली नहीं, निष्कंप चेतना ही ना खड़ी रहे उस भय स्तंभ पीड़िता असंग मृगी सी, जिसकी मृत्यु समक्ष खड़ी हो मृग फुकी आंखों में। शब्दार्थ कौतूहल यानी विस्मय, उद्भासित यानी प्रज्वलित, रंध्र युगल यानी दोनों आंखें, लीलना यानी निगलना, निष्कंप यानी स्थिर, चेतना हीना यानी निष्पंद, भय स्तंभ पीड़िता यानी भय से जकड़ी हुई और दुखित, असंग निश्चेतन, मृग रिपु शिकारी अथवा शेर। व्याख्या: चित्रलेखे, उनकी खंडित समाधि से उत्पन्न कुपित मुद्रा को देखकर मैं न डरती, यह कैसे संभव था? मैंने तो जिज्ञासावश उन ध्यान लीन मुनिदेव की पलकें तनिक अपनी ओर खींच ली थी, त्यों ही उनके प्रज्वलित दो नयन रंध्रों से ऐसी ज्वाला निकलने लगी मानो स्वयं अग्नि देवता निकलकर बाहर आ रहे हैं, और जैसे मुझे वह ज्वाला एक ग्रास में ही निगलने को प्रस्तुत हो गई है। मैं तनिक भी हिली डुली नहीं, अपितु तो स्थिर निष्पंद चेतनाशून्य भयभीत जड़ित व्याकुल हुई उस हिरणी की तरह खड़ी रह गई जिसकी मृत्यु सामने सिंह की आंखों में खड़ी हो। विशेष उदाहरण अलंकार: पर मैं जली नहीं, तत्क्षण पावक ऋषि के नयनों का परिणत होने लगा स्वयं शीतल मधु की ज्वाला में, मानो प्रमुदित अनल ज्वाल जावक में बदल रहा हो नयन रक्त पर नहीं कोप से आसव की लाली से। शब्दार्थ पावक यानी आग, परिणत यानी बदलना, प्रमुदित यानी प्रसन्न, अनल ज्वाल यानी अग्नि की शिखा, जावक यानी महावर, आसव यानी शराब। व्याख्या: लेकिन मैं महामुनि के नयन रंध्रों से फूटी हुई ज्वाला में जली नहीं, तभी उनकी आंखों की वह आग मधु के शीतल ज्वाला में बदलने लगी, मानो प्रसन्न हुई अग्नि की ज्वालाएं जावक का रूप धारण करके बदल रही हैं। उनके नयन लाल थे किंतु क्रोध से नहीं, अपितु मधुमय प्रणय मदिरा की लालिमा से रक्तिम हो रहे थे। विशेष उत्प्रेक्षालंकार: सहसा फूट पड़ी स्मृति की आभा ऋषि के आनंद पर, लौट गया मेरी ग्रीवा पर आकर हाथ प्रलय का, जो ही हुई सचेत की लज्जा से सुगबुगा उठी मैं, पट संभाल कर खड़ी देखने लगी बंक लोचन से, अब जाने क्या भाव सुलगते हैं महर्षि के मुख पर। शब्दार्थ स्मृति यानी मुस्कान, ग्रीवा यानी गर्दन, सुगबुगा उठी यानी तिलमिला उठी, बंक लोचन यानी तिरछी नजर। व्याख्या: उसी समय ऋषि के मुख पर मुस्कुराहट की कांति खिल उठी और मेरी गर्दन पर आकर प्रलय का हाथ जैसे लौट गया। जो ही मुझे होश आया मैं लज्जा से कांपने लगी और आंचल संभाल कर तिरछी नजर से देखने लगी तथा यह विचार करने लगी कि अब ऋषि मुख पर न जाने कौन से भाव फूट रहे हैं। अनुद्विग्न ही उठे मुनीश्वर, बोले अमृत गिरासे, सौम्य हो कल्याण, कहाँ से इस वन में आई हो? सुर कुल की शुचि प्रभा या की मानव कुल की तनया हो? कहाँ मिला यह रूप देखते ही जिसको पावक की दाहकता मिट गई, स्थानों में पत्ते निकल रहे हैं। शब्दार्थ अनुद्विग्न यानी उत्तेजना रहित शांत, अमृत गिरा यानी मधुर वाणी, सौम्य यानी सुंदरी, शुचि यानी शुद्ध, तनया यानी बेटी, दाहकता यानी जलन, स्थाणु यानी ठूंठ। व्याख्या। इसके पश्चात मुनिदेव शांतिपूर्वक उठे और मधुर वाणी में पूछने लगे, शुभे तुम्हारा कल्याण हो, तुम इस वन में कहाँ से आई हो? तुम देवताओं के कुल की पवन कांति हो या किसी मनुज कुल की सुपुत्री हो? तुम्हें यह सुंदर रूप कहाँ से मिला जिसे देखते ही अग्नि की जलन शांत हो गई और ठूंठ में ही पत्ते निकलने लगे? विशेष संदेह अलंकार। वरण करोगी मुझे? तुम्हारे लिए जरा को तजकर शुभे तपस्या के बल से यौवन मैं ग्रहण करूंगा, प्रौढ़ मेघ पादप नवीन मदकल किशोर कुंजर सा। शब्दार्थ जरा यानी बुढ़ापा, पादप यानी वृक्ष, मदकल यानी मदमस्त, कुंजर यानी हाथी। व्याख्या। क्या तुम मुझे वर लोगी? मैं तुम्हारे लिए बुढ़ापे को छोड़कर तपस्या के बल से गंभीर बादल, नवीन वृक्ष तथा मदमस्त युवा कुंजर के समान यौवन प्राप्त कर लूंगा। विशेष उपमा अलंकार। डरो नहीं, यह तपोभंग चित नहीं सिद्धि मेरी है, पहले भी जब हुआ पूर्ण कटुतप महर्षि करदम का, स्वर्ग नहीं विष्णे वर में नारी मनोज्ञ मांगी थी, सो तुम सम्मुख खड़ी तपस्या के फल की आभासी, अब होगा क्या अपर स्वर्ग जिसका संधान करूं मैं, हरि प्रसन्न यदि नहीं सिद्धि बनकर तुम क्यों आई हो? शब्दार्थ तपोभंग तपस्या का खंडन, च्युति यानी निम्नता, पतन, मनोज्ञ यानी सुंदर, संधान यानी खोज। व्याख्या। डरो मत, यह तपस्या का टूटना मेरा पतन नहीं अभी तो सिद्धि है। पहले भी जब महर्षि करदम का कठोर तप पूरा हुआ था तो उन्होंने वरदान में स्वर्ग नहीं अभी तो सुंदर नारी को ही मांगा था, फिर तुम तो तपस्या के फल की कांति सरी थी स्वयं मेरे सामने खड़ी हो, इससे भिन्न दूसरा स्वर्ग और कौन सा होगा जिसकी मैं खोज करूं? यदि भगवान मुझ पर प्रसन्न नहीं है तो तुम सिद्धि बनकर क्यों आई हो? अर्थात निश्चित रूप में ही प्रभु मेरी साधना से प्रसन्न है और मेरी तपस्या की सिद्धि के रूप में उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है। विशेष करदम मुनि सांख्य दर्शन के रचयिता महर्षि कपिल के पिता थे। कहते हैं कि उन्होंने 10,000 वर्ष तक घोर तपस्या की और ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर कपिल की माता तथा स्वयंभू मनु की कन्या देवभूति से विवाह किया। मणिमाणिक्य नहीं तब केवल एक रत्न तापस का, शुचिस्मिते मैं वही रत्न तुमको अर्पित करता हूँ, हम तुम मिलकर साथ रहेंगे जहाँ पर्णशाला में, शुभे स्वर्ग वरदान मांगने वहाँ स्वयं आएगा। शब्दार्थ शुचिस्मिते यानी पवित्र निर्मल मुस्कान वाली, पर्णमाला यानी पत्तों की कुटिया। व्याख्या। तपस्वी का तो एकमात्र रत्न तप ही है, मणिमाणिक्य नहीं, और निर्मल मुस्कान मई सुकन्या को मैं वही तपस्या रत्न अर्पित कर रहा हूँ, हम और तुम जिस पर्णशाला में एक साथ मिलकर रहेंगे स्वर्ग वहीं वरदान मांगने आएगा। सुकन्या के संपूर्ण संवाद में स्मरण अलंकार है। चित्रलेखा। कीर्तिमान की कीर्ति साधना भावुक तपोव्रति की, जो रसमय उद्वेग त्रिया के उर्मे भर सकती है वह उद्वेग भला जागेगा मणिमाणिक्य मुकुट से, धन्य वही जो विहो नहीं यश को अर्पित होती है। शब्दार्थ कीर्तिमान यानी यशस्वी, कीर्ति यानी यश, त्रिया यानी स्त्री, उद्वेग यानी उत्तेजना, विभव यानी वैभव ऐश्वर्य। व्याख्या। यशस्वी का यश और भावुक तपस्वी की साधना जो स्त्री के हृदय में भी रसमयी उत्तेजना भर सकती है वह उत्तेजना माणि मणि को तथा मुकुटों से नहीं लाई जा सकती, अतः वही साधना अन्य है जो धन का नहीं यश का संचय करती है। विशेष संगति अलंकार। सुकन्या। चित्रे मैं भर गई न जाने किस अपार महिमा से, प्रथम प्रथम ही उठा जाग नारित्व विभासित होकर, लगा सूर्य में चमक रहा जो यह प्रकाश मेरा है, महाव्योम में भरे रत्न मुझसे ही छिटक रहे हैं, नाच रही उर्मिया भंगिमाले मेरे चरणों की, दौड़ रही वन में जो वह मेरी ही हरियाली है। शब्दार्थ विभासित यानी प्रकाशित, महाव्योम यानी महाकाश, रत्न यानी तारे, उर्मिया यानी लहरें, भंगिमा यानी अदाएं। प्रसंग। च्यवन ऋषि के हरि प्रसन्न यदि नहीं सिद्धि बनकर तुम क्यों आई हो वाक्य सुनकर सुकन्या के चित्त पर जो अमिट प्रभाव पड़ा उसी का स्पष्टीकरण सुकन्या स्वयं अपने मुख से करती है। व्याख्या। हे चित्रे उस तपस्वी के मधुसिक्त वचन सुनकर न जाने मैं किस अपार महिमा से भर गई। उस समय जीवन में पहली बार मेरा नारीत्व तो प्रतिभाषित होकर उठ जाएगा, अर्थात मैं उस दिन जान पाई कि हम नारियों की कितनी अपार महिमा है जो ऐसे महान तपस्वियों की सिद्धि का कारण बनती है और हमारी सिद्धि के लिए न जाने कितने युग साधना में बिता देते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे सूर्य में चमकने वाला प्रकाश उसका प्रकाश नहीं है, अपितु वह मेरी ही आभा से आभास्वर हो रहा है। महाकाश में चमकने वाले नक्षत्र मेरी ही कांति के परिणाम हैं। जल में जो लहरें अटखेलियाँ कर रही हैं वह सब मेरी चरण भंगिमा का ही प्रतिफलन है, और वन में जो हरियाली छा रही है वह सब मेरे हर्ष का ही फल है। विशेष इसी भाव के समानांतर पद्मावत में जायसी का भाव दर्शनीय है। रवि शशि नखत दीपहीं वही ज्योति रतन पदारथ मानिक मोती, स्मरण अलंकार है। लौट गए थे हो निराश शत शत युवराज जहाँ से, वही द्वार खुल गया श्रवण कर वह यह प्रशस्त तापस की, हरि प्रसन्न नहीं सिद्धि बनकर तुम क्यों आई हो। शब्दार्थ शत शत सैकड़ों, श्रवण कर यानी सुनकर, प्रशस्त यानी प्रशंसा सूचक वचन, तापस यानी तपस्वी। व्याख्या, सैकड़ों राजकुमार जिस द्वार से निराश होकर लौट गए थे वही द्वार तापस के इस प्रशंसा सूचक वचन को सुनकर खुल गया कि यदि भगवान मुझ पर प्रसन्न नहीं है तो सिद्धि बनकर तुम यहाँ क्यों आई हो। हाय चित्रलेखे, प्रशस्तियाँ क्या क्या नहीं सुनी थी, किसे नहीं मुख में दिखा था पूर्ण चंद्र अंबर का, नयनों में वारुणी और सीपी की चमक पहचान, पर अदृश्य जो देव पड़े थे गहन गूढ़ मंदिर में, उनका वंदन गान किसी ने कहाँ कभी गाया था। शब्दार्थ वारुणी है शराब, वंदन गान यानी प्रशस्ति। व्याख्या, हाय चित्रलेखे, मैंने अपने सौंदर्य के विषय में अपार प्रशस्तियों का वर्णन सुना है। कौन ऐसा राजकुमार था जिसे मेरे मुख में आकाश का चंद्रमा न दिखाई दिया, आंखों में शराब और त्वचा में सीपी जैसी उज्ज्वल चमक न दिखाई पड़ी हो, परंतु मेरे आभ्यंतर मानस में अदृश्य रूप में जिस देवता का निवास था क्या कभी उसका प्रशस्ति गान भी किसी ने किया था, अर्थात किसी ने नहीं किया था। लौट गए सब देख चमत्कृत शोणित मांस त्वचा को, रंगों के प्राचीर गंध के घेरों से टकराकर, कोई भी तो नहीं त्वचा के परे पहुंच पाया था। शब्दार्थ चमत्कृत यानी विस्मित करने वाला, शोणित यानी रत्न, प्राचीर यानी दीवार। व्याख्या, सभी राजकुमार मेरे विस्मयकारी शोणित मांस और त्वचा को देखकर बाह्य सज्जा रूपी रंगों की दीवार तथा मुझसे निकलने वाली गंध के घेरों से टकरा कर लौट गए। कोई भी तो ऐसा युवक नहीं आया जो इस त्वचा के घेरे को पार करके परे पहुंचा हो, या जिसने उसके पार जाने का किंचित यत्न भी किया हो। सबको लगा मोहिनी सी मुझ में कुछ भरी हुई है, पर यह सम्मोहन तरंग आती है उमड़ जहां से, भीतर के उस महासिंधु तक किसकी दृष्टि गई थी। व्याख्या, सबको ऐसा लगा जैसे मुझ में कोई मोहक शक्ति आपूरित है, लेकिन क्या कभी किसी ने अपनी दृष्टि को वहां तक ले जाने का प्रयास किया जहां के भीतर निवास करने वाले गहन सिंधु से यह मोहक तरंग उमड़ कर बाहर प्रतिभासित होती है। देखा उसे महर्षि चवन ने और सुप्त महिमा को जगा दिया आयास मुक्त निश्चल प्रशस्ति यह गाकर, हरि प्रसन्न यदि नहीं सिद्धि बनकर तुम क्यों आए हो। व्याख्या, उस भीतरी महिमा के महासागर को महर्षि च्यवन ने देखा था और यह सरल निश्चल प्रशस्ति गाकर मेरी सुप्त महिमा को जगा दिया, यदि भगवान मुझ पर प्रसन्न नहीं है तो तुम सिद्धि बनकर क्यों आई हो। लगा मुझे सर्वत्र देह की पपड़ी टूट रही है, निकल रही हैं त्वचा तोड़कर दीपित नई त्वचाएं, चला आ रहा फूट अतल से कुछ मधु की धारा सा, हरियाली से मैं प्रसन्न आकंठ भरी जाती हूँ। शब्दार्थ दीपित यानी प्रकाशित, जलती हुई, आकंठ यानी गले तक। व्याख्या, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर की त्वचा रूपी ऊपरी पपड़ी टूट रही है और भास्वर होने वाली नई त्वचाएं अंदर से निकल रही हैं। गहन चित्त के अंतराल से ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई मधु की धारा बही चली जा रही है, और मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे मैं गले तक हर्ष से भरी जा रहे हैं। विशेष उत्प्रेक्षा अलंकार, रही मूक की मूक किंतु अंबर पर चढ़े हृदय ने कहा, गूढ़ दृष्टा महर्षि तुम मृषा नहीं कहते हो। परम सत्य की स्मृति उदार मैं देवी, मैं नारी हूँ। रूप दीर्घ तप का प्रसाद है, विविध साधनाओं से तापस प्रज्ञावान पुरुष जो सिद्धि लाभ करते हैं। अनायास ही सुलभ शक्ति वह रूपमती नारी को, नारी का सौंदर्य विश्व विजयनी अमोघ प्रभा है। शब्दार्थ मूक यानी शांत चुप, अंबर यानी आकाश ऊर्ध्वलोक, गूढ़ दृष्टा यानी रहस्यदर्शी, अनायास यानी बिना परिश्रम के, अमोघ यानी अचूक। व्याख्या, मैं वैसे तो चुप रही पर ऊर्ध्वलोक में चढ़े हुए मेरे हृदय ने कहा, हे रहस्यदर्शी महर्षि, तुमने जो कुछ कहा वह झूठ नहीं है। सचमुच ही मैं परब्रह्म की उदार मुस्कान हूँ। सौंदर्य की प्राप्ति दीर्घकाल की तपस्या के पश्चात होती है। इसी सौंदर्य को तपस्वी और प्रज्ञावान तो विभिन्न साधनाओं के द्वारा प्राप्त करते हैं, लेकिन नारी के सौंदर्य की वह शक्ति बिना किसी परिश्रम के सहज ही सुलभ होती है। वास्तव में नारी का सौंदर्य विश्व को जीतने वाले अमोघ प्रभा के समान है। सचमुच ही फूटते स्पर्श से पत्र अपत्र द्रुमों में धरती जहाँ चरण ऊसर में फूल निकल आते हैं। शब्दार्थ अपत्र यानी स्थान, ठूंठ, द्रुमो यानी पेड़ों, ऊसर यानी बंजर। व्याख्या, सचमुच ही मेरे स्पर्श मात्र से ठूंठ वृक्ष पत्र पल्लवित हो जाते हैं और मैं जहाँ पर भी चरण रख लेती हूँ वहाँ की बंजर भूमि में भी फूल खिलने लगते हैं। मैं अनंत की प्रभा नहीं अनुचरी किरीट मुकुट की, प्रणय पुण्यशीला स्वतंत्र मैं केवल उसे वरूंगी जिसमें होगी ज्योति किसी दारुणतम तपश्चरण की। शब्दार्थ अनुचरी यानी दासी, किरीट यानी ताज, प्रणय पुण्यशीला यानी प्रेम में पवित्र, दारुणतम यानी भयंकर महान, तपश्चरण यानी तपस्या। व्याख्या, मैं उस पर ब्रह्म की प्रभा हूँ, किसी ताज या मुकुट की दासी नहीं हूँ। प्रेम में पवित्र हुई मैं स्वतंत्र नारी केवल उसी का वर्णन करूंगी जिसे महान तपस्या के फलस्वरूप आभा प्रतिफलित हो रही होगी। भाव यह है कि चूंकि मैं स्वयं ज्योति का अंश हूँ अतः मुझे उसी का वर्णन करना चाहिए जो स्वयं भी उसी परब्रह्म की ज्योति का अंश हो, क्योंकि इसके अभाव में मेरा उससे भाव समीकरण होना असंभव है, परिणामतः मेरा सारा जीवन असफल हो जाएगा। किंतु हाय, तुम एक बार क्यों नहीं पुनः कहते हो, हरि प्रसन्न यदि नहीं सिद्धि बनकर तुम क्यों आई हो। व्याख्या, सुकन्या कहती है कि हाय, तुम पुनः एक बार इस वाक्य को क्यों नहीं दोहराते कि यदि भगवान मुझसे प्रसन्न नहीं है तो तुम भला फिर सिद्धि बनकर क्यों आई हो। चित्रलेखा, उफ्री, मादक घड़ी प्रेम के प्रथम प्रथम परिचय के, मर कर भी सखी मधु मुहूर्त यह कभी नहीं मरता है, जब चाहो साकार देख लो उसे बंद आंखों में। शब्दार्थ मादक यानी नशीली, मोहक मस्त, मधु मुहूर्त यानी सुंदर क्षण। व्याख्या, प्रेम के प्रथम परिचय की यह मादक घड़ी कितनी कसकपूर्ण होती है। यह सुंदर मुहूर्त मर कर भी नहीं मरता, जब चाहो तब इसकी साकार मूर्ति आंखों में बंद मिलती है। पर मैं क्यों इस भांति स्वयं कंटकित हुई जाती हूँ, प्रथम प्रेम की स्मृति भी कितनी पुलकपूर्ण होती है। च्यवन पूज्य सारी वसुधा के पर असंख्य ललनाएं, उन्हें देखती हैं अपार श्रद्धा असीम गौरव से, नारी को पर्याय बताकर तपह सिद्ध भूमा का सचमुच जाति को ऋषि ने अद्भुत मान दिया है। शब्दार्थ कंटकित यानी दुखित, पुलकपूर्ण यानी रोमांच से भरी, ललनाएं यानी स्त्रियां, पर्याय यानी रूप, भूमा यानी आनंद। व्याख्या, लेकिन इस भांति क्यों दुखित हुई जा रही हूँ। आह, निश्चय ही प्रथम प्रेम की याद बड़ी रोमांचपूर्ण होती है। जीवन सारी धरती के पूज्य हैं, अगणित नारियां उन्हें अटूट श्रद्धा अत्यंत गौरव से देखती हैं। स्त्री को तपस्या की सिद्धि और ब्रह्मानंद का रूप बताकर वास्तव में ऋषि ने स्त्री जाति को अनोखा आदर दे दिया है। सुकन्या, पूछो मत, वैसे तो ऋषि की प्रकृति तनिक कोपन है, मन की रचना में निविष्ट कुछ अधिक अंश पावक का, किंतु नारियों पर सचमुच उनकी अपार श्रद्धा है और सहज उतनी ही वत्सलता निरीह शिशुओं पर। शब्दार्थ कोपन यानी क्रोधपूर्ण, निविष्ट यानी स्थिर संचित, वत्सलता यानी स्नेह, निरीह यानी असहाय भोले निर्दोष। व्याख्या, कुछ न पूछो, वैसे तो ऋषि का स्वभाव थोड़ा क्रोधपूर्ण है, उनके मन की रचना में अग्नि का ही कुछ अधिक अंश सन्निहित हो गया है, लेकिन स्त्रियों पर सचमुच उनकी बड़ी श्रद्धा है और स्वभावतः उतना ही स्नेह वे भोले बच्चों से करते हैं। कहते हैं, शिशु को मत देखो अगंभीर भावों से, अभी नहीं ए दूर केंद्र से परम गूढ़ सत्ता के, जाने क्या कुछ देख स्वप्न में भी हंसते रहते हैं। श्रद्धा अगंभीर यानी साधारण चंचल। व्याख्या, वे यानी चवन कहते हैं कि बच्चे को चंचल तथा सारहीन भावों से नहीं देखना चाहिए। ये अभी उस परम गहन परब्रह्म के केंद्र से दूर नहीं है, न जाने क्या कुछ देख कर ये स्वप्न में भी हंसने लगते हैं। स्यात् भेद जो खुला नहीं अब तक रहस्य ज्ञानी पर, अनायास ही उसे देखते हैं ए सहज नयन से, क्योंकि दृष्टि पर अभी ज्ञान का केंचुल नहीं चढ़ा है। जिसके भी भीतर पवित्रता जीवित है शुचिता की, उस अदोष नर के हाथों में कौन मैल नहीं है। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने शिशुओं के सहज अव्यक्त अनुभवन के रहस्य का स्पर्श किया है। व्याख्या, शायद परम सत्ता का गूढ़ भेद जो अब तक रहस्य भेदने के प्रयत्न में लगे ज्ञानी के द्वारा नहीं खुल पाया है, वे शिशु उसे अनायास ही सहज दृष्टि के द्वारा देख लेते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि पर तर्क के खंडहरों में भटकने वाली ज्ञान की केंचुली अभी नहीं चढ़ पाई। जिसके भीतर शिशुओं जैसी पवित्रता विद्यमान है, उस निर्दोष मनुष्य के हाथों में कोई मैल नहीं मिल सकता। जब उर्वशी यहाँ आई थी पुत्र प्रसव करने को, ऋषि ने देखा था उसको, क्या कहूँ कि किस ममता से। और रात के समय कहा, चिंतन गंभीर विरामे शुभे, प्रिया का जन्म ग्रहण करने में बड़ा सुयश है। चंद्र आहत कर विजय प्राप्त कर लेना वीर नरों पर बड़ी शक्ति है। शुचि स्मिते शूरता इसे कहता हूँ, और नारियों में भी श्रुत गर्भिणी सप्तशीला को देख मुझे सम्मानपूर्ण करुणासी हो जाती है। कितनी विवश किंतु कितनी लोकोत्तर वह लगती है। शब्दार्थ, प्रसव यानी जन्म, चंद्राहत यानी सौंदर्य से घायल, श्रुत यानी ढीला, सत्वशील यानी तेजस्विनी, लोकोत्तर यानी अलौकिक। प्रसंग, प्रस्तुत पद में सुकन्या चित्रलेखा के प्रति च्यवन ऋषि के द्वारा कहे गए शब्दों को दोहराती है, जिनमें ऋषि ने नारी जन्म को पवित्र कहा है। व्याख्या, जब उर्वशी अपने पुत्र को जन्म देने यहाँ आई थी, तब ऋषि ने उसे इतनी ममता से देखा था कि मैं उनका वर्णन भी नहीं कर सकती। और रात के समय उन्होंने चिंतन पूर्ण गंभीर वाणी में कहा था कि नारी का जन्म ग्रहण करने में बड़ी सुकृति है। सौंदर्य से व्याकुल कर वीर पुरुषों पर विजय पा लेना वस्तुतः वीरता है। अतः नारी की शक्ति महान है, और नारियों में भी गर्भ के भार से शिथिल तेजस्विनी नारी को देखकर मुझे इसके प्रति आदर से भरी करुणा सी होने लगती है। मैं सोचता हूँ कि वह विवश होते हुए कितनी अलौकिक प्रतीत होती है। देह कांति प्रीतिमा युक्त गति नहीं पदों के वश में, चल लेती है किसी भांति पीवर उस मेघाली सी, जो समुद्र का जल पीकर मंथर डगमगा रही है। शब्दार्थ, देह कांति शरीर का सौंदर्य, प्रीतिमा युक्त यानी पीला, पीवर यानी भारी, मेघाली यानी बदली, मंथर यानी धीरे। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने गर्भवती स्त्री के शरीर एवं गति का सुंदर चित्रण किया है। व्याख्या, गर्भवती स्त्री के शरीर की कांति पीली पड़ जाती है, उसकी चाल चरणों के वश में नहीं रहती। वह तो किसी भांति उस जल से भरी गंभीर बदली की तरह चल देती है, जो सागर का जल पीकर धीमी गति से डगमगा कर आकाश में चल रही हो। आकृति ओप विहीन किंतु वह रहित नहीं भावों से, फिर भी कोई रंग देर तक ठहर नहीं पाता है, विवशा के वश में मानो अब ए उर्मिया नहीं है। शब्दार्थ, आकृति यानी शक्ल, ओप विहीन यानी कांति रहित, विवशा यानी विवश, उर्मिया यानी लहरें। व्याख्या, गर्भवती स्त्री की आकृति कांतिहीन हो जाती है, किंतु वह भावों से रहित नहीं होती, किंतु फिर भी उसके मुख पर कोई भाव काफी देर तक नहीं ठहर पाता। उस गर्भ विवशा के वश में मानव उसकी महाव लहरियां भी नहीं रही हैं। दृग हो जाते वक्र या कि बाहर मन के बंधन से देख नहीं पाती जैसे देखना चाहती है वह, यही बेवसी मुख पर आकुलता बन छा जाती है। व्याख्या, उसकी आंखें तिरछी या मन के बंधन से बाहर हो जाती हैं, यह जैसे देखना चाहती है वैसे नहीं देख पाती, उसकी यही बेवसी मुख पर बेचैनी बनकर छा जाती है। निस्सहाय उदरस्त भविष्यत के अधीन वह दीना, किस प्रकार रख सके भला अपने वश में अपने को, जो चाहता भविष्य वक्त्र पर वही भाव आते हैं, मानो जोले जन्म कभी तुतली वाणी बोलेगा, लगा भेजने वह अजात तुतले संकेत अभी से, सत्यवती नारी अंकन पट है भविष्य के कर का। शब्दार्थ, निस्सहाय यानी बेसहारा, उदरस्त यानी गर्भ में स्थित, वक्त्र यानी मुख, अजात यानी अनुत्पन्न, अंकन पट यानी पट्टी। व्याख्या, वह असहाय एवं गर्भस्थ भविष्य के अधीन हुई अबला भला अपने को किस प्रकार वश में रख सकती, भविष्य जो चाहता है उसके मुख पर वही भाव आ जाते हैं, मानो जो अनुत्पन्न शिशु कभी जन्म लेकर तुतली बोली में बोलेगा वही अपने तुतले संकेत पहले से भेजने लग गया हो, और गर्भवती नारी उस भविष्य में होने वाली संतान के कर की पट्टी हो। कितनी सहयातना पालती त्रिया भविष्य जगत का, कह सकता है कौन पूर्ण महिमा इस तपश्चरण की। शब्दार्थ, यातना यानी पीड़ा कष्ट, तपश्चरण यानी तपस्या। व्याख्या, स्त्री कितने कष्ट सहकर संसार के भविष्य का पालन करती है, इस गहन तपस्या की महिमा का भला कौन बखान कर सकता है। और प्रसूता के समीप से जब महर्षि आए थे बोले थे, उर्वशी अभी देखा कैसी लड़ती थी पड़ी हुई निस्तब्ध शमित पीड़ा की शांत कुहू में, तट पर लगी अचल नौकासी जो अदृश्य में जाकर दृश्य जगत के लिए सार्थ जीवन का ले आई हो, और रिक्त होकर प्रभार से अवशेष तंद्रा में याद कर रही हो धुंधली बातें अदृश्य के तट की। शब्दार्थ, प्रसुता यानी जन्म देने वाली, शमित यानी शांत, कुहू यानी अमावस्या, सार्थ यानी साथ, प्रभार यानी भार, अशेष यानी गहरी संपूर्ण। व्याख्या, और प्रजननवती उर्वशी के समीप जब महर्षि आए तब उन्होंने कहा कि उर्वशी अभी तो मौन जड़ीभूत हुई पीड़ा के शांत अमावस्या में पड़ी थी, और अब मानो किसी अदृश्य स्थान में आकर तट पर आई हुई सुस्थिर नाव सा यह इस दृश्य जगत के लिए जीवन का कोई साथी ले आई है, गर्भ के भार से मुक्त होकर अब गहन अर्धनिद्रा में यह मानो उस अदृश्य के तट की धुंधली बातों को याद कर रही है। बांध रहा जो तंतु लोक को लोकोत्तर जगती से, उसका अंतिम छोर न जाने कहाँ अदृश्य छिपा है, दृश्य छोर है किंतु यहाँ प्रत्यक्ष प्रिया के उर्मे। शब्दार्थ, छोर यानी किनारा। व्याख्या, जो जन तंतु इस लोक को अलौकिक जगत से बांधे हुए हैं उसका अंतिम किनारा न जाने कहाँ अदृश्य में छिपा हुआ है, लेकिन यहाँ स्त्री के हृदय में उसका छोर साफ दिखाई दे रहा है, अर्थात स्त्री ही वह तंतु है जो इस लोक को इतर लोक से बांधती है। नारी ही वह महासेतु जिस पर अदृश्य से चलकर नए मनुज नवप्राण दृश्य जग में आते रहते हैं, नारी ही वह कोष्ठ देव दानव मनुष्य से छिपकर महाशून्य चुपचाप जहाँ आकार ग्रहण करता है। शब्दार्थ, महासेतु यानी बड़ा पुल, कोष्ठ यानी कोठा। व्याख्या, स्त्री ही वह महान सेतु है जिस पर अदृश्य लोक से चलकर नए मनुष्य तथा नए प्राण इस स्थूल संसार में आते रहते हैं। नारी ही वह विशाल कोठा है जहाँ देवता राक्षस या मनुष्यों से छिपकर परम शून्य अपना आकार ग्रहण कर लेता है। सच पूछो तो प्रजा सृष्टि में क्या है भाग पुरुष का, यह तो नारी ही है जो सब यज्ञ पूर्ण करती है, सत्व भार सहती असंग संतति असंग जनती है, और वही शिशु को ले जाती मन के उच्च निलय में जहाँ निरापद सुखद कक्ष है शैशव के झूले का। शब्दार्थ, सत्व भार यानी गर्भ का भार, असंग यानी अकेली, निलय यानी भवन, निरापद यानी दुख रहित, कक्ष यानी कमरा। व्याख्या, च्यवन ऋषि कहते हैं यदि सब पूछो तो संसार के उत्पन्न होने में पुरुष का कुछ भी भाग नहीं है, यह तो नारी ही है जो सृष्टि के संपूर्ण यज्ञ को स्वयं पूरा करती है। वह अकेली ही गर्भ के भार को सहती है, संतान भी वही अकेली जन्मती है और वही बालक को मन के उस उच्च धर्म में ले जाती है जहाँ बचपन के भूले का सुरक्षित सौंदर्य एवं सुखद कक्ष है। शुभे, सदा शिशु के स्वरूप में ईश्वर ही आते हैं। महापुरुष की ही जननी प्रत्येक जननी होती है, किंतु भविष्य को समेत अनुकूल बना लेने का मिलता कहाँ सुयोग विश्व की सारी माताओं को। तब भी उनका श्रेय सुचरिते अल्प नहीं, अद्भुत है। शब्दार्थ सुयोग यानी अवसर, श्रेय यानी महत्ता। व्याख्या, बच्चे के रूप में सदा ईश्वर ही नारी के गर्भ में आते हैं। प्रत्येक माँ महापुरुष की ही जननी होती है, लेकिन भविष्य को समेट कर अपने अनुकूल बना लेने का अवसर संसार की सभी माताओं को कहाँ मिल पाता है। फिर भी शीलवती सुकन्या उनकी महत्ता कम नहीं है, अद्वितीय है। उर्वशी का प्रवेश। उर्वशी चित्रलेखा से, अच्छा तो यह आप सखी के संग विराज रही हैं। अब तो यही भेंट हो जाती है सब अप्सरियों से, चेवन कुटी है अथवा यह मघवा का मोद भवन है। शब्दार्थ मघवा यानी इंद्र, मोद भवन यानी नंदनवन। व्याख्या, उर्वशी चित्रलेखा से कहती है, अच्छा तुम यहाँ पर बैठी हो, अब तो देवलोक की सभी अप्सराओं से ही भेंट हो जाती है। हे सखी, यह चेवन कुटी है या इंद्र का नंदनवन है, क्योंकि हम सब अप्सराएं तो नंदनवन में ही मिला करती हैं, फिर कहीं भ्रम से हम वहीं पर तो नहीं बैठे। विशेष संदेह अलंकार। चित्रलेखा, मोद भवन हो भले सुकन्या का यह, पर अपना तो राजभवन है, जहाँ कल्पना और सत्य संगम से मनियों का अगला शांक वंशी नरेश जन्मा है। हम अप्सरा किंतु आद्या किस मानव की बेटी है। शब्दार्थ मोद भवन यानी आनंद विहार, सत्य संगम यानी सत्य के समन्वय से, शशांक वंशी यानी चंद्रवंशी। व्याख्या, यह सुकन्या के लिए आनंद विहार की स्थली हो सकती है, पर हमारे लिए तो यह राजभवन है, क्योंकि यहाँ कल्पना और सत्य के संगम से मनुष्य जाति के लिए एक और चंद्रवंशी राजा ने जन्म लिया है। चित्रलेखा के हृदय में बात करते करते जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हे आर्य, भला बताओ तो सही, हम अप्सराएं किस मानव की बेटी हैं। विशेष, चित्रलेखा द्वारा शिशु को कल्पना और सत्य का संगम कहना तर्कसंगत है। जहाँ उर्वशी कल्पनाशील युवती है, वहाँ पुरुर्वा सत्य का अनुसंधाता है, अतः पुत्र में दोनों का संगम होना स्वाभाविक है। उर्वशी, बेटी नहीं हुई तो क्या, अब मातो हूँ मानव की, नहीं देखती रत्नमयी को कैसा लाल दिया है। व्याख्या, हे चित्रलेखा, हम किसी मनुष्य की बेटी नहीं हुई तो क्या हुआ, किसी मानव की मातों में बन ही गई हूँ। अरे देख तो मुझ रत्नमयी को कैसा सुंदर लाल मिला है। चित्रलेखा, कौन कहे, जो तेज दमकता है इसके आनंद पर प्राप्त हुआ हो उसे अंश, वह जननी नहीं जनक से। शब्दार्थ आनंद यानी मुख। चित्रलेखा उर्वशी से कहती है, कौन कह सकता है कि इस शिशु मुख पर जो तेज झलक रहा है वह माँ का न होकर पिता से प्राप्त हुआ है। उर्वशी, अरे देखती नहीं लाल की नन्ही सी आंखों में, अब भी तो सुस्पष्ट स्वर्ग के सपने झलक रहे हैं, टुकुर टुकुर संतुष्ट भाव से कैसे ताक रहा है, मानो हो सर्वज्ञ सर्वदर्शी समर्थ देवों सा। शब्दार्थ ताक यानी देखना। व्याख्या, चित्रलेखा के उपरोक्त तर्क का विरोध करते हुए उर्वशी करती है, अरे देख तो सही, मेरे लाल की छोटी छोटी आंखों में इस समय भी तो स्वर्ग के स्वप्न प्रतिबिंबित हो रहे हैं, देखो यह कैसे कैसे टुकुर टुकुर हमारी ओर संतुष्ट भाव से देख रहा है, ऐसा प्रतीत होता है मानो यह देवताओं के समान सब कुछ जानने वाला, सब कुछ देखने वाला और पूर्ण समर्थ है। विशेष, मानो हो सर्वज्ञ ने उत्प्रेक्षा अलंकार, देवों सा ने उपमा अलंकार। सुकन्या, सखी तुम्हारा लाल अभी से बहुत बहुत नखट है, देखती रही हूँ बड़े ध्यान से, जब से तुम आई हो तुम पर से इस महाधूर्त की दृष्टि नहीं हटती है। लो छाती से लगा जुड़ाओ इसके त्रिशत हृदय को, जो भी करूं दुष्ट मुझको अपनी माँ क्यों मानेगा। शब्दार्थ महाधूर्त यानी शैतान, जुड़ाओ यानी शीतल करो, त्रिशत यानी प्यासे। व्याख्या, इसी बीच च्यवन ऋषि की सहधर्मिणी सुकन्या उन दोनों के पास आती है और शिशु के विषय में कहती है, हे सखी, तुम्हारा लाड़ला बहुत शरारती हो गया है। मैं बड़े ध्यान से देख रही हूँ, जब से तुम यहाँ आई हो तब से इस शैतान की नज़र तुम्हारे ऊपर से हटती ही नहीं है। लो इसे छाती से लगाकर इसके प्यासे दिल को मातृत्व प्यास से प्यासा को शीतल कर दो। हे उर्वशी, मैं चाहे इसके लिए कितना भी क्यों न कर लूँ, मगर यह दुष्ट भला मुझको अपनी माँ क्यों मानने लगा। विशेष महाधूत और दुष्ट शब्द मातृ प्रेम से सिद्ध हैं। इन शब्दों के वाचक में सुकन्या के शिशु के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। उर्वशी, अरे दुड़ाना क्या इसको, लादे इस हृदय कुसुम को, लगा वक्ष से स्वयं प्राण तक शीतल हो जाते हैं। शब्दार्थ दुड़ाना एवं शीतल, हृदय कुसुम एवं हृदय के पुष्प। व्याख्या, अरे इसको क्या शीतल करूंगी, ला इस हृदय रूपी पुष्प को मुझे दे, इसे अपने वक्ष पर लगाकर ही मैं स्वयं प्राण तक शीतल हो जाती हूँ। विशेष हृदय कुसुम में रूपक अलंकार, माता के वात्सल्य रस में पगे हुए स्वाभाविक उद्गारों के दर्शन होते हैं। सुकन्या की गोद से बच्चे को लेकर हृदय से लगाती है। आह, गर्भ में लिए इसे कल्पना श्रृंग पर चढ़कर किस सुरम में उत्तुंग स्वप्न को मैंने नहीं छुआ था। कल्पना श्रृंग यानी कल्पना की चोटी, उत्तुंग यानी ऊंचे। व्याख्या, शिशु को हृदय से लगाकर चित्रलेखा तथा सुकन्या को शिशु जन्म से पूर्व उत्पन्न अपने हृदय के उद्गारों को व्यक्त करती हुई उर्वशी कहती है, आह इस शिशु को गर्भ में धारण करने के पश्चात मैंने कल्पना की चोटी पर चढ़कर कौन से सुंदर एवं ऊंचे से ऊंचे स्वप्न को नहीं छुआ था, अर्थात तेरे विषय में मैं न जाने कितनी कितनी सुखद कल्पनाएं किया करती थी। यही चाहती थी समेट कर पीलूं सूर्य किरण को, विधु की कोमल रश्मि तारकों की पवित्र आभा को, जिससे ये अपरूप अमर ज्योतियां गर्भ में जाकर समा जाएं इसके शोणित में हृदय और प्राणों में। शब्दार्थ रश्मि यानी किरण, अपरूप यानी पूर्व। व्याख्या, शिशु को जन्म देने से पूर्व में यह चाहती थी कि सूर्य की किरणें, चंद्रमा की कोमल रश्मियों तथा अमर ज्योतियां मेरे गर्भ में प्रवेश कर इस शिशु के शोणित हृदय तथा प्राणों में समा जाएं। विशेष सूर्य तेजस्विता का, चंद्र हृदय की कोमलता का और तारे प्राणों की पवित्रता का पर्याय है, अतः इन तीनों के परस्पर समन्वय से ही वह शिशु का निर्माण करना चाहती है। प्रथम उल्लेख अलंकार है, मातृत्व की निश्चल कल्पना है। यही सोचती थी त्रिलोक में जो भी शुभ सुंदर है, बरस जाए सब एक साथ मेरे अंचल में आकर, मैं समेत सबको रच दूं मुस्कान एक पतली सी, और किसी भी भांति से जड़ दूं उसके अधरों पर। शब्दार्थ त्रिलोक यानी तीनों लोकों में, अंचल यानी गोद। व्याख्या, इसके जन्म से पूर्व मैं यह सोचा करती थी कि तीनों लोकों में जो कुछ ही मंगलकारी और सुंदर है वह सब एक साथ मेरी गोद में आकर बरस जाए, मैं उसको संचित कर एक पतली सी मधुर मुस्कान का निर्माण करके किसी प्रकार उसके होठों पर जड़ दूं, जिससे आजीवन उसके मुख पर मधुर मुस्कान का ही साम्राज्य, क्रोध की तथा ईर्ष्या एवं जलन की उस पर छाया भी न पड़े। सबका चाहा भला कि इसके मानस की रचना में समावेश हो जाए दया का, सभी भली बातों का विनय सुनाती रही अगोचर निराकार निर्गुण को, भ्रूण पिंड को परम देव छू दें अपनी महिमा से। शब्दार्थ मानस यानी हृदय, समावेश यानी आविष्ट, अगोचर यानी अदृश्य, निराकार यानी आकार रहित, निर्गुण यानी सत्य रज तम आदि गुणों से परे, भ्रूण पिंड निगर्भस्थ शिशु का शरीर। व्याख्या, तुझे जन्म देने से पूर्व मैंने कभी किसी का अहित नहीं विचारा, मैं सबके कल्याण की बात सोचती रही, जिससे कि जिस समय तेरे मानस की रचना में करुणा तथा अन्य सभी अच्छी बातों का समावेश हो जाए, यहाँ तक कि मैं अपनी यह प्रार्थना निर्गुण निराकार एवं अगोचर परम देव को सुनाती रही, जिससे वे अपनी महिमा से गर्भस्थ शिशु के शरीर को एक बार छू दें अर्थात आशीर्वाद दे दें। वह सब होगा सत्य लाल मेरा, यह कभी उगेगा पिता सदृश ही अपर सूर्य बनकर अखंड भूतल में, और भरेगा पुण्यवान यह माता का गुण लेकर उर अंतर अनुरक्त प्रजा का शीतल हरियाली से। शब्दार्थ भूतल यानी पृथ्वी जगती, उर अंतर यानी दिल में, अनुरक्त यानी अनुराग युक्त प्रेमी आसक्त वफादार। व्याख्या, मुझे इसके स्वरूप को देखकर यह अब यह पूर्ण विश्वास है कि यह सब कुछ है। जो कुछ मैंने सोचा था पूर्णतः सत्य होगा। मेरा यह लाल अपने पिता के समान अप्रतिम तेज वाले सूर्य के समान इस अखंड भूतल पर उदित होगा और अपनी माता के पुष्पवान एवं शीतल हरियाली जैसे गुण लेकर मेरा यह पुण्यकर्मा लाल सच्चे हृदय से प्रजा में आसक्ति रखेगा तथा उसके प्रति सदा वफादार बना रहेगा। जब होगा यह भू प्रचुर धन धान्यवती भू होगी, रोग शोक परिताप पाप वस धाके घट जाएंगे, सब होंगे सुखपूर्ण जगत में, सबकी आयु बढ़ेगी, इसीलिए तो सखी अभी से इसे आयु कहती हूँ। शब्दार्थ भूप यानी राजा, प्रचुर यानी पर्याप्त काफी, धन धान्यवती धन और अनाज से पूर्ण, परिताप यानी यातनाएं, वसुधा यानी पृथ्वी। व्याख्या, जब यह इस धरती का राजा बनेगा तब मैं ही प्रचुर धन्य धान्यवती हो जाएगी। पृथ्वी पर निवास करने वाले सही प्राणियों के दैहिक दैविक तथा भौतिक शारीरिक तथा मानसिक रोग शोक परिताप और पाप कट जाएंगे। संसार में सब सुखी होंगे तथा सबकी आयु बढ़ेगी, इसीलिए हे सखी मैं अभी से इसको आयु कहकर पुकारती हूँ। बच्चे को बार बार चमकारती हूँ। कितनी मृदुल उर्मितानों में अकथ अपार सुखों की, दुग्ध धवल यह दृष्टि मनोरम कितनी अमृत सरस है, और स्पर्श में यह तरंग सी क्या है सोम सुधा की, अंक लगाते ही आँखों की पलकें झुक जाती हैं। हाय सुकन्या, कल से मैं जाने किस भांति जीऊँगी। शब्दार्थ दुग्ध धवल यानी दुग्ध के समान श्वेत, सोम सुधा यानी सोमरस। व्याख्या, प्राणों में कितनी सुंदर अवर्णनीय सुखों की मधुर लहरें हिलोर ले रही हैं। इसकी यानी शिशु की यह दृष्टि मनोहर और अमृत रस में सनी है। इसके स्पर्श में न जाने क्या सोम रस की तरंग सी भरी है। इसे गोद में लेते ही पल के नीचे झुक जाती हैं। सुकन्या, कल से मैं किस प्रकार जीवित रह सकूंगी। सुकन्या, क्यों कल क्या होगा। उर्वशी, कल से मुझ पर पहाड़ टूटेगा। यज्ञ पूर्ण होगा, विमुक्त होते ही आचारों से कल अवश्य ही महाराज मेरा संधान करेंगे और न क्षण भर कभी दूर होने देंगे आँखों से। शब्दार्थ विमुक्त यानी छुटना, आचार यानी लोक कर्म। सुकन्या पूछती है कल क्या होगा, तो उर्वशी बताती है कि कल से मुक्त पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा, क्योंकि कल यज्ञ पूर्ण हो जाएगा और परिचर्या से मुक्त होते ही महाराज कल अवश्य ही मेरी खोज करेंगे तथा मुझे क्षण भर भी कभी आंखों से दूर नहीं होने देंगे। हाय दैत्य जिसके निमित्त इतने अधीर व्याकुल हैं, उनका यह वंशधर जन्म ले वन में छिपा पड़ा है, और विवशता यह तो देखो मैं अभागनी नारी दिखा नहीं सकती सुत का मुख अपने ही स्वामी को, न तो पुत्र के लिए स्नेह स्वामी का तज सकती हूँ। शब्दार्थ दैत्य यानी पति स्वामी, वंशधर यानी वंश को धारण करने वाला। व्याख्या, बड़े दुख का विषय है कि जिसके लिए पति इतने विकल और बेचैन है वही उनका वंशज जन्म लेकर जंगल में छिपा पड़ा है, और यह भी कितनी लाचारी है कि मैं अभागनी नारी अपने बेटे का मुंह अपने ही पति को नहीं दिखा सकती और न ही पुत्र के लिए अपने स्वामी का स्नेह छोड़ सकती हूँ। भरत शाप जितना भी कट था अब तक वह वर ही था, उसका दाहक रूप सुकन्या अब आरंभ हुआ है। शब्दार्थ सरल है। व्याख्या, भरत का शाप कितना भी कठोर क्यों न हो अब तक तो यह वरदान ही था, उसका तप्त और भयंकर रूप तो अब आरंभ हुआ है। सुकन्या, महाक्रूर कर्मा कोविद ये भरत बड़े दारुण हैं, यह भी क्या वे नहीं जानते संतति के आने पर पति पत्नी का प्रणय और भी दृढ़तर हो जाता है। शब्दार्थ कोविद यानी पंडित, दारुण यानी भयंकर, संतति यानी संतान। व्याख्या, भरत ऋषि पंडित होते हुए भी नहीं जानते थे कि संतान का जन्म होने पर पति पत्नी का प्रणय संबंध और अधिक दृढ़तर हो जाता है। भाव यह है कि वह उन सब बातों को जानते थे, इसी कारण उन्होंने असह्य पीड़ा को वहन करने वाले शाप का बाण तुम पर छोड़ा है। बाला रहती बंधी मृदुल धागों से शिर सुमन के, किंतु अंत में तनय पयस के आते ही चंचल में वही शिर के तार रेशमी कड़ियां बन जाते हैं, और कौन है जो तोड़े झटके से इस बंधन को। रेशम जितना ही कोमल उतना ही दृढ़ होता है। शब्दार्थ बाला यानी युवती, शीर्ष सुमन यानी शीर्ष का फूल, अंक यानी गोद, तनय यानी पुत्र, पयस यानी दूध, अंचल यानी छाती स्तन। व्याख्या, पुत्र को जन्म देने से पूर्व युवती शीर्ष के फूल के कोमल रेशे के समान अपने प्रियतम से बंधी रहती है, अर्थात उस समय युवा युवती का प्रेम बहुत नाजुक होता है। किसी छोटी सी शंका अथवा गिला शिकवा में ही वह प्रेम संबंध शीर्ष कुसुम के धागे के समान छिन्न भिन्न हो सकता है, किंतु जब उसकी गोद में नन्हा मुन्हा अथेलियाँ करता है और आंचल में उमड़ उमड़ कर दुग्ध निकलता है, तब वे शीर्ष के तार भावुक अस्थिर प्रेम रेशम की कठोर रस्सियाँ बन जाते हैं। ऐसा कौन है जो झटके से इसको तोड़ने की सामर्थ्य रखता हो, क्योंकि रेशम जितना कोमल होता है उतना ही कठोर होता है। अर्थात पुत्र प्रसव के पश्चात उनके प्रेम में जो चांचल्य का तत्व विद्यमान होता है वह लुप्त हो जाता है और उनका प्रेम गंभीर हो जाता है, कारण संतान में प्रेमी प्रेमिका को उनके रूप स्वभाव एवं क्रीड़ाओं के दर्शन होते हैं, जिसके फलस्वरूप प्रेम का पार्थिव रूप आत्मिक रूप धारण कर लेता है। बस यही प्रेम का दृढ़ बंधन है। कौन भामिनी है जो अंगज पुत्र और प्रियतम में किसी एक को लेकर सुख से आयु बिता सकती है? कौन पुरंधरी तप सकती है पति के लिए तनय को, और कौन सती सुख के निमित्त स्वामी को त्याग सकेगी? शब्दार्थ भामिनी यानी क्रोध करने वाली सुंदर स्त्री, अंगज यानी शरीर से उत्पन्न, पुरंधरी यानी स्त्री देवी, पति पुत्रवती स्त्री को पुरंधरी बोलते हैं, निमित्त यानी लिए, सती यानी पतिव्रता स्त्री। व्याख्या, अपने सौंदर्य पर मुग्ध होने वाली कौन ऐसी स्त्री है जो अपनी कोख से उत्पन्न पुत्र और प्रियतम में से किसी एक का चयन करके सारा जीवन सुखपूर्वक बिताने का दावा करे? कौन ऐसी पति पुत्रवती युवती है जो पति के लिए पुत्र को छोड़ दे, और कौन सी ऐसी पतिव्रता स्त्री है जो अपने बेटे के लिए अपने पति का त्याग कर सकती हो? अर्थात कोई नहीं है। यह संघर्ष कराल उर्वशी बड़ा कठिन निर्णय है, पुत्र और पति नहीं, पुत्र या केवल पति पाओगी सो भी तब जब छिपा सको निष्ठुर बन सदा तनय को, और मिटा दो इसी छिपाने में भविष्य बेटे का। सखी दुष्ट मुन्ने कितना यह भीषण श्राप दिया है, इससे तो था श्रेष्ठ भस्म कर देते तुम्हें जलाकर। शब्दात कराल भीषण भयंकर। व्याख्या, उर्वशी यह बड़ा भयंकर संघर्ष है, इसमें निर्णय करना बहुत कठिन है कि मैं पति और पुत्र में से किसका वरण करें। भरत मुनि ने श्राप भी तो बड़ा भयंकर दिया है कि तुम पुत्र और पति दोनों को एक साथ नहीं पा सकते, या तो तुम पुत्र का चयन कर सकती हो या पति का। यह भी केवल उसी समय संभव हो सकता है जब निष्ठुर बनकर तुम अपने पुत्र जन्म का रहस्य अपने पति से छिपा कर रखो, और इस प्रकार इस रहस्यमयी प्रवंचना में तुम्हारे बेटे का भविष्य छार छार हो जाएगा। हे सखी, देखो तुष्ट मुनि ने यह कितना भीषण श्राप दिया है, इससे तो यही श्रेष्ठ होता कि वे तुम्हें जलाकर भस्म कर देते, जिससे न भोता बाँस और न बस्ती बाँस हुए। चित्रलेखा, किंतु जला दें तो संध्या आने पर इंद्र सभा में नाच नाच कर कौन देवताओं की तपन हरेगी, काम लोल कटके कंपन भावों के संचालन से। शब्दार्थ तपन यानी ताप, काम लोल कट यानी काम से चंचल कमर। व्याख्या, चित्रलेखा सुकन्या से कहती है, किंतु यदि भरत ऋषि उर्वशी को अपने शाप से भस्म कर देते तो अपनी कामातुर कटी के कंपन तथा भ्रिकुटी संचालन से संध्या के समय इंद्र की सभा में नाच नाच कर देवताओं की तपन का हरण कौन करता? सरल मानवी क्या जानो तुम कुटिल रूप देवों का, भस्म समूहों के भीतर चिनगियां अभी जीती हैं सिद्ध हुए, पर सतत चारणी तई नीन केतन की अब भी मंद मंद चलती है श्रमित रक्त धारा में। शब्दार्थ सतत चारणी यानी निरंतर संचरण करने वाली, तरी यानी नौका, नीम केतन यानी कामदेव, श्रमित यानी थके हुए। व्याख्या, चित्रलेखा कहती है, हे सरल हृदय भूतल पर रहने वाली नारी, तुम भला कुटिल देवों के स्वरूप को क्या जानो? यद्यपि देवलोक अपनी कामना को जलाकर सिद्ध हो गए हैं, किंतु उनके भस्म समूहों में अब भी काम की कुछ चिंगारियाँ शेष हैं। उनकी शीतल काम तथा तृष्णा से रहित रक्तधारा में भी कामदेव की नौका निरंतर रूप से मंद मंद संचरण करती रहती है। सहे मुक्त प्रहरण अनंग का दर्प कहाँ वह तन में। विबुध पंच शर के बाणों को मानस पर लेते हैं, वश में नहीं सुरों के प्रशमन सहज स्वच्छ पावक का। ए भोगते पवित्र भोग औरों में वहन जगाकर। शब्दार्थ प्रहरण यानी प्रहार आघात, अनंग यानी कामदेव, दर्प यानी शक्ति सामर्थ्य, विबुध यानी देवता, पंचशर यानी कामदेव, सुरों यानी देवताओं, प्रशमन यानी शमन करना आत्मसात करना, पावक यानी अग्नि, वहन यानी आग। प्रसंग देवों के हृदय में काम के प्रति क्या प्रतिक्रिया होती है, इसकी सहज कल्पना कवि दिनकर चित्रलेखा के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। व्याख्या देवताओं में भला इतनी शक्ति कहाँ है कि वे कामदेव का स्वतंत्र आघात कर सकें, अर्थात काम के मानस में स्थित होने पर जो शरीर में इंद्रियजन्य व्याकुलता होती है वह देवों में नहीं होती, क्योंकि वे सिद्ध और शीतल होते हैं। देवता लोग कामदेव के प्रहारों को अपने मानस पर धारण करते हैं, क्योंकि उस कामाग्नि का सहज एवं स्वच्छ रूप से शमन करना उनके लिए संभव नहीं है। वे तो दूसरों में कामाग्नि जगा करें और उसके दर्शन से ही सुख भोग करके प्रेम का सात्विक भोग करते हैं। कहते हैं अप्सरा बचे यौवन हर प्रसव व्यथा से, और अप्सराएं इस सुख से बचती ही रहती हैं, क्योंकि कहीं बस गई भूमि पर वे माताएं बनकर, रस लोलुप दृष्टियां सिद्ध तेजो निधान देवों की, लौटेंगी किनके लौटेंगी किनके कपोल ग्रवा उड़के तलपों पर। हम कुछ नहीं रंजिकाएं हैं मात्र अभुक्त मदन की। शब्दार्थ यौवन हर मैं जवानी को हरने वाले, प्रसव पीड़ा यानी प्रजनन पीड़ा, तेजो निधान यानी तेजस्वी, ग्रीवा यानी गर्दन, तल्प यानी शैया, रंजिकाएँ यानी मनोरंजन करने वाले। व्याख्या ऐसा कहा जाता है कि अप्सराएं जवानी को हरण करने वाली प्रसव की वेदना से बची रहती हैं, और वे इस संतति सुख से वास्तव में वंचित रह जाती हैं, क्योंकि यदि वे माताएँ बनकर धरती पर निर्वासित हो जाएँ तो विषय रस के लालची सिद्धों की और तेजस्वी देवताओं की दृष्टियाँ जिनके गालों पर, गर्दन पर और वक्षस्थल की शैया पर आकर लौटेंगी, अर्थात फिर वे किसके यौवन माधुरी को और किसके सुंदर अंग प्रत्यंगों को देखकर अपनी कामोदीप्त दृष्टि को शांत करेंगे। अतः हम अतिरिक्त काम इच्छा का मनोरंजन करने वाली कामिनियाँ यानी अप्सराओं के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। हाय सुकन्या, नियत शाप से ग्रसित अप्सराओं की कोई भी तो नहीं विषम वेदना समझ पाता है। शब्दार्थ नियति यानी भाग्य। व्याख्या हाय सुकन्या, भाग्य के शाप से ग्रसित हम अप्सराओं के हृदय की इस विषम पीड़ा को कोई भी तो नहीं समझ पाता। सुकन्या उर्वशी से, तो यह दारुण नियत क्रीड़ा कब तक चलता जाएगा, कब तक तुम इस भांति नित्य छिपकर वन में आओगी। सुख को हृदय लगा क्षण भर मन शीतल कर लेने को, और आए कुछ कह सकती हो कब तक यहाँ रहेगा। हे भगवान उर्वशी पर यह कैसी विपद पड़ी है। शब्दार्थ दारुण यानी भयंकर, नियत क्रीड़ा यानी भाग्य का खेल, विपद यानी आपदा, विपत्ति यानी संकट। व्याख्या हे उर्वशी, भाग्य का यह भयंकर लेख आखिर कब तक चलता रहेगा, और आखिर कब तक पुत्र को कलेश लगा क्षण भर के लिए मनःतोष करने के लिए इस प्रकार पूर्वा से छिप छिप कर वन में आओगे। साथ में क्या मुझे यह बता सकती हो कि आई यहाँ पर कब तक रहेगा। ये सब प्रश्न करते करते जब उसने उर्वशी का कारुणिक एवं विवश मुखड़ा देखा तो लंबी सी श्वास निकालकर सुकन्या इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं कह सकती। हे भगवान उर्वशी पर यह कैसी विपत्ति आ पड़ी है। उर्वशी आने को तो स्यात आज यह अंतिम ही आना है, कल से तो फिर लौट पड़ेगी वही शरण जीवन की। दिन भर रहना संग संग प्रियतम के जहाँ रहेंगे, और बिता देना समग्र रजनी उस प्रणय कथा में जिसका कहीं न आज न तो मध्यावसान होता है। तब भी जाने विरह आय का कैसे झेल सकूंगी। हाय पुत्र तू क्यों आया था उसके बंध उदर में, अभिशप्ता जो नहीं प्यार माँ का भी दे सकती है। शब्दार्थ स्यात यानी शायद, संभवतः, शरण यानी क्रम, समग्र यानी संपूर्ण, रजनी यानी रात, बंध यानी बांध, उदर यानी पेट, अभिशप्ता यानी शापित व्याख्या। उर्वशी सुकन्या के उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर देती है। जहाँ तक जाने का प्रश्न है, जहाँ तक यहाँ आने का प्रश्न है, संभवतः यह मेरा अंतिम दिवस है। कल से तो पुरुर्वा के पास जाने पर मेरे जीवन का वही पुराना क्रम शुरू हो जाएगा। दिन में तो वे जहाँ पर भी रहेंगे उनके साथ मुझे ही रहना पड़ेगा, और रात्रि आने पर ऐसी प्रेम कथा में खो जाना पड़ेगा जिसका न आदि है, न मध्य और न कभी अंत होता है। इतना होते हुए भी मैं कह नहीं सकती कि आयु के वियोगजन्य दुख को मैं कैसे सहन कर सकूंगी। प्रायश्चित करती हुई उर्वशी कहती है कि हाय पुत्र, तू मुझ जैसी अभिशप्ता और वंध्य उदरा अप्सरा की कोख से क्यों जन्मा था, जो तुझे माँ का प्यार भी नहीं दे सके। मैं निमित्त ही रही सुकन्या इस अबोध बालक की, तुम्हें छोड़कर निखिल लोक में और कौन माता है। केवल भ्रूण वहन, केवल प्रजनन मातृत्व तो नहीं है, माता वही पालती है जो शिशु को हृदय लगाकर। सखी दयामय देवी शरण्य शुभे स्वसे कल्याणी, मैं क्या कहूँ वंश से बिछुड़ा कब तक आयु रहेगा, यहाँ धर्म की शरण तुम्हारे अंचल की छाया। किंतु पितागृह तो अवश्य ही उसे कभी जाना है, वह हो आज या कुछ दिन में या यौवन जाने आने पर। शब्दार्थ निमित्त यानी हेतु कारण, अबोध यानी अनजान, निखिल यानी संपूर्ण, भ्रूण वहन यानी गर्भ को धारण करना, प्रजनन यानी जन्म, शरण्य यानी शरण देने वाली, स्वसे यानी भगनी बहन। व्याख्या। हे सुकन्या, मैं तो इस बच्चे की माता कहलाने की हेतु मात्र हूँ। सत्य रूप में देखा जाए तो इस संपूर्ण विश्व में तुम्हें छोड़कर दूसरी कौन इस अबोध शिशु की माता कहलाने के अधिकार में है। केवल गर्भ धारण कर लेना और फिर निश्चित समय पर उसको जन्म दे देना ही मातृत्व तो नहीं है। माता तो असल में वह है जो बच्चे को अपनी छाती से लगाकर पालती है। भाव यह है, इस दृष्टि से इस शिशु की माता मैं नहीं वरन तुम हो, क्योंकि मैंने तो केवल इसको जन्म भर दिया है, जबकि इसका पालन पोषण तो तुम ही कर रहे हो। हे सखी करुणामय देवी, शरण में आए हुए को शरण देने वाली, मंगल रूपा कल्याण करने वाली भगनी सुकन्या, मैं यह क्या बता सकती हूँ कि अपने वंश से बिछुड़कर आयु कब तक यह धर्म की शरण में तथा तुम्हारे आंचल की छाया में रहता। लेकिन इतना तो निश्चित है कि एक न एक दिन उसे अपने पिता के घर में तो अवश्य ही जाना है। हाँ, यह बात दूसरी है कि वह कब जा सकेगा। हो सकता है भाग्य की प्रवंचना से वह आज या कुछ दिन में अथवा यौवन आने पर ही जाए। अपना सुख तृणवत नगण्य है, उसे छोड़ सकती हूँ, किंतु पुत्र का भाग्य भूमि पर रह कैसे छोड़ूंगी। देना भेज उचित जब समझो, मुझसे जनित तनय पर जब ही पड़ेगी दृष्टि दैव की, वज्र आन टूटेगा गरज उठेगा भरत शाप, मैं पराधीन पुतली सी खिंची हुई क्षित छोड़ अचानक स्वर्ग चली जाऊंगी। छूट जाएंगे अकस्मात वे सुख जिनके लालच में, जब से आई यहाँ कल्प कानन को भूल गई। शब्दा तृणवत किनके के समान, जनित यानी उत्पन्न किए गए, तनय यानी पुत्र, दैत यानी स्वामी पति प्रियतम, क्षित यानी धरती, कल्पकानन यानी नंदनवन। व्याख्या। मातृत्व में विभोर होकर उर्वशी सुकन्या से कहती है, मैं अपने सुख प्रणय सुख को जो तिनके के समान नगण्य मानकर किसी भी क्षण से छोड़ सकती हूँ, लेकिन इस धरती पर रहते हुए अपनी आँखों के सामने मैं अपने क्षणिक सुख के लिए बच्चे के भाग्य को कैसे खोल सकती हूँ। हे सुकन्या, इसलिए मेरे द्वारा प्रसूत इस शिशु को जब तुम्हारी इच्छा हो तभी राजगृह भिजवा देना। यह मैं जानती हूँ कि जब स्वामी की दृष्टि उस पर पड़ेगी तब मुझ पर एक वज्र सा टूट पड़ेगा, भरत द्वारा दिया गया शाप गर्जन कर उठेगा, और मैं पुतली के समान पराधीन सी होकर इस धरती को छोड़ अचानक खींची हुई स्वर्गलोक को चली जाऊंगी। फिर अकस्मात मेरे सभी सुख जिनकी लालसा लेकर मैं इस धरती पर उतरी थी और जिनके लिए मैंने नंदन वन को भुला दिया था छूट जाएंगे। यह धरती, यह गगन, मृगों से भरी हरी अटवी, यह ए प्रसून, ये वृक्ष स्वर्ग में बहुत याद आएंगे। झलमल झलमल सर सलिल वह उषा की लाली से, शस्यों पर बिछली बिछली आभा यह रजत किरण की, चहक चहक उठना वह विभुओं का निकुंज पुंजों में। स्वर्गवासिनी मैं श्रद्धा से नमस्कार करती हूँ, अविनश्वर सौंदर्यपूर्ण नश्वर इस महामही को। कितना सुख, कितना प्रमोद, कितनी आनंद लहर है, कितना कम स्वर्गीय स्वयं सुरपुर है इस वसभा के। शब्दार्थ, अटवी यानी जंगल, रसून यानी फूल, सरित सलिल यानी नदी का पानी, शस्य यानी फसल अनाज, निकुंज पुंजो यानी झाड़ियों लताओं के झुरमुटों, अविनश्वर यानी शाश्वत अमर, सुरपुर यानी इंद्रलोक। व्याख्या: स्वर्ग में जाने पर मुझे पृथ्वी, यहाँ से खड़े होकर दिखाई देने वाला यह नीलाकाश, मृगों से आपूरित हरे भरे जंगल तथा ये रंग बिरंगे फूल बड़े याद आएंगे। प्रातःकाल उषा की अरुणाभा से सरित के जल का झलमल झलमल करना, धानों के खेतों पर चंद्रमा की चांदी जैसी किरणें का बिखर जाना, लता कुंजों में पक्षियों का कलरव करना, भला मुझ स्वर्गवासिनी को स्वर्ग में कहाँ देखने को मिलेगा। इसलिए इस विशाल किंतु नश्वर मही के शाश्वत सौंदर्य को मैं स्वर्गवासिनी श्रद्धा से नप्त होकर नमस्कार करती हूँ। इस वसुधा पर कितना आनंद, सुख तथा प्रमोद है। इंद्रलोक का स्वर्गीय आनंद तो इसकी तुलना में बहुत ही कम है। दिन में भी अंकस्थ किए मोहिनी प्रिया छाया को, ये पर्वत रसमग्न अचल कितने प्रसन्न लगते हैं। कितना हो उठता महान यह गगन निशा आने पर, जब उसके उर्मे विराट नक्षत्र द्वार आता है। हो उठती यामिनी गहन तब उन निस्तब्ध क्षणों में, कौन गान है जिसे अचेतन अंधकार गाता है। आती है जब वायु स्पर्श सुखमयी सुदूर क्षितिज से, कौन बात है जिसे प्रेमों पर वह लिखती जाती है। शब्दार्थ अंकस्थ यानी अंक में धारण किए, अचल यानी अडिग, यामिनी यानी रात, निस्तब्ध यानी शांत, सुदूर यानी दूर से, क्षितिज यानी धरती और आकाश का मिलन स्थल, तृणों यानी घास। व्याख्या: दिन में जब ये अडिग पर्वत मोहित करने वाले प्रिय छाया को अपने भीतर आत्मसात कर लेते हैं, तब भी वे कितने सुंदर लगते हैं। रात्रि के आगमन पर जब आकाश की छाती पर नक्षत्रों का विराट ज्वार भाटा सा छा जाता है, तब वह कितना महान प्रतीत होता है। जब रात काफ़ी घनी हो जाती है, उसी समय उन निस्तब्ध क्षणों में कौन सा ऐसा गीत है जिसे अचेतन अंधकार गाया करता है। और जब दूर क्षितिज से स्पर्श से ही अमित सुख प्राप्त करने वाली, प्रदान करने वाली वायु आती है, तो वह कौन सी ऐसी रहस्यमयी बात है जिसे हरे हरे तृणों पर लिखकर छोड़ जाती है, जिसे वे रह रहकर अपनी संगीतमयी ध्वनि से सुनाते रहते हैं और ओस बिंदुओं के रूप में करुणायित होकर रोते रहते हैं। विशेष पर्वत और अचल में पुनरुक्त वदाभास अलंकार है। और गंधमादन का वह अनमोल भुवन फूलों का, मृग ही नहीं विटप तृण भी कितने सजीव लगते थे। पत्र पत्र को श्रवण बना अटवी कैसे सुनती थी, सुख निनद चुपचाप हमारे चुंबन कलकूजन का। झुक आती थी किस प्रकार डालियां हमें छूने को, शैलराज मानो सपने में बाहें बढ़ा रहा हो। किस प्रकार विचलित हो उठते थे प्रसून कुंजों के, मानो गंध पूर्ण सांसों से हमको पी जाएंगे। फेन फेन होती वह उर्मिल हरियाली शिखरों की, ज्वार बांध किस भांति बादलों को छूने उठती थी। कैसे वे तटनियां उछलती हुई सुधान शिला पर, हमें देख चलने लगती थी और अधिक उछलाकर। शब्दार्थ विटप तृण यानी वृक्षों के पत्ते, श्रवण यानी कान, अटवी यानी वन जंगल, निनद यानी निनाद स्वर, ज्वार बांध यानी ज्वार भाटे का रूप धारण करते, तटिनियाँ यानी सरिताएँ, सुधार यानी ढलान वाली चिकने, प्रसंग। उर्वशी अपने पिछले दिनों की सुखद कल्पना का स्मरण कर रही है तथा दोनों ने परस्पर की गई रतिक्रीड़ा का प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका ही पुनराख्यान कर रही है। व्याख्या: और मैं पुष्पों से आच्छादित इस गंधमादन भुवन का क्या वर्णन करूं? यहाँ के जीव जंतुओं की बात तो छोड़िए, मुझे तो वृक्षों का एक एक पत्ता तक सजीव प्राणवान लगता है। हमारे द्वारा परस्पर किए गए चुंबन तथा मधुर अटखेलियों से उत्पन्न सूक्ष्म ध्वनि को यवन वृक्षों के प्रत्येक पत्र की कान बना मौन धारण कर कितने ध्यान से सुना करता था। हमारे आलिंगन से उद्दीप्त होकर लताएं तथा शाखाएं हमारा मधुर स्पर्श करने के लिए झुकाती थीं, और हिमालय की चोटियां ऐसी प्रतीत होती थीं मानो विशाल भुजाएं जो सपने में आगे बढ़कर हमें अपने आगोश में ले लेना चाहते हैं। हमारे मुख तथा नासिका से निकलने वाली उत्तप्त एवं कामासक्त निश्वासों से पीड़ित होकर कुंजों के फूल बेचारे विचलित होते थे। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वे अपनी गंधपूर्ण श्वासों के द्वारा हमको पी जाएंगे। हमारी प्रणय क्रीड़ा से रोमांचित होकर पहाड़ों की चोटियों पर लहराने वाली हरियाली समुद्र की लहरियों के समान खेल उगल रहे थे और ज्वार भाटे के समान लग रहे थे, जो किसी न किसी प्रकार बादलों से मिलने के लिए उत्सुक हो रहे थे। हरियाली की उर्मियाँ स्त्रीलिंग तथा बादल पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग का पुल्लिंग से पैगम्भण करने का आकुल भाव उर्वशी तथा पुरुर्वा के परस्पर निबद्ध हो जाने के आकुल भाव को प्रदर्शित करता है और ढलान वाली चिकनी चिकनी शिलाओं से टकरा कर उछलती हुई बहने वाली सरिताएँ हमें देख कर और अधिक इथला कर चलने लगती हैं। भाव यह है कि एक गर्विता नायिका का रूप धारण करके इथला इथला कर यह दर्शाने का प्रयत्न करती थी कि तुम ही नहीं मैं भी अपने प्रियतम समुद्र के आलिंगन पास में समा जाने के लिए जा रहे हैं। तुम्हें तो किसी न किसी क्षण अपने प्रियतम के आलिंगन से अलग होना ही पड़ेगा, मगर मुझ सौभाग्यशालिनी को देखो जो एक बार उसी गोद में समा जाने के पश्चात कभी उनसे विरक्त नहीं होती। विशेष उपमा रूपक तथा उत्प्रेक्षा अलंकार स्मरण अलंकार प्रकृति का मानवीकरण। और हाय वह एक निर्धरी पिघले हुए सुकृत से तीर द्रुमों की छाया में कितनी भोली लगती थी। लगता था यह चली आ रहे जिस पवित्र उद्गम से वहीं कहीं रहते होंगे नारायण कुटी बनाकर। शब्दार्थ निर्धरी में छोटा झरना। सुकृत यानी अच्छे कर्म। व्याख्या और हाय मैंने निर्झरणी को देखा था, उसकी याद भला मैं कैसे भूल सकूंगी। अच्छे कर्मों से द्रवित हुई सी एक निर्झरणी पेड़ों की छाया में बहती हुई कितनी भोली लग रही थी। ऐसा लगता था जैसे वह जिस किसी पवित्र उद्गम स्रोत से निकल कर आ रही है वही कहीं उसके प्रियतम कुटिया बनाकर रहते होंगे, जिनके साथ वह अभी काम क्रीड़ा करके आ रही है और अब उस प्रेम का स्मरण करने से द्रवित हो रही है। विशेष उदाहरण तथा स्मरण अलंकार प्रकृति का मानवीकरण। आह गंधमादन का वह सुख और अंक प्रियतम का। सखी स्वर्ग में जो अलभ्य है उस आनंद मदिर का इसी सरस्वस्धा पर मैंने छक्कर पान किया है। व्याप गई जो सुरभिघ्राण में सुषमा चकित नयन में रोमांचक सनसनी स्पर्श सुख की जो समा गई है त्वचा जाल ग्रीवा कपोल में उंगली की पोरों में धो पाएगा उसे कभी क्या सलिल वियद गंगा का। पारिजात तरुतले ध्यान में लगी हुई खोजूंगी उरह देश पर सुखद लक्ष्य प्रियतम के वक्षस्थल का रोमांचित संपूर्ण देह पर चिन्ह विगत चुम्बन के। और कभी क्या भूल सकूंगी उन सुरम्य रभसों को प्रिय का वह किरण अभंग मेरे समस्त अंगों से रस में देना बिता मदिर शर्वरी खुली पलकों में कभी लगाकर मुझे स्निग्ध अपने उच्छ्वसित हृदय से कभी बालकों सा मेरे उर्मे मुखदेश छिपाकर। शब्दार्थ अलभ्य यानी अप्राप्य मदिर यानी मस्त घ्राण यानी सुंघने की शक्ति विशद यानी विस्तृत उरह देश यानी वक्ष लक्ष्य यानी चिन्ह रभस यानी मिलन अभंग यानी निरंतर शर्वरी यानी रात मुखदेश यानी मुख। व्याख्या गंधमादन का यह सुख और प्रियतम की गोद सब मुझे याद आ रहे हैं। वह मस्त आनंद जो स्वर्ग में भी अप्राप्य है उसका मैंने इस रसमयी पृथ्वी पर जी भर कर पान किया। नासा रंध्रों में जो सुगंधित तथा चकित नयनों में जो सौंदर्य व्याप्त हो गया है त्वचा में कपोलों में तथा उंगली की पोरों में स्पर्श के सुख की जो पुलकित कर देने वाली सनसनी समा गई है उसे क्या कहीं पवित्र एवं विस्तृत गंगा का जल धो पाएगा। कल्प वृक्ष के नीचे ध्यान में जगी हुई मैं अपने वक्ष पर प्रियतम के वक्षस्थल के सुखद चिन्हों को तथा रोमांचित हुई सारी देह पर पिछले चुंबनों को ढूंढेगी और प्रियतम के साथ की गई उन सुंदर रंगरेलियों को क्या मैं भूल सकूंगी। मेरे सारे अंगों से प्रियतम का सदा ठिठोली कर खेलते रहना और प्रेम रस में निष्पलक नयनों से सारी रात मस्ती से बिता देना, कभी मुझे अपने आकुल एवं स्निग्ध हृदय से लगा लेना और कहीं बालकों की तरह मेरी गोद में अपना मुँह छिपा लेना, ये सब क्या कहीं मुझे भूल सकेंगे। तब फिर आलोड़न निगूढ़ दो प्राणों की ध्वनियों का उनकी वह बेकली विलय पाने की एक अपर में शोणित का वह ज्वलन अस्थियों में वह चिंगारी सी स्वयं विभासित हो उठना पुलकित संपूर्ण त्वचा का। मानो तन के अंधकार की परतें टूट रही हैं और डूब जाना मन का निश्चल समाधि के सुख में किसी व्योम के अंतराल में किसी महासागर में। सखी पृथ्वी का प्रेम प्रभा में कितना दिव्य गहन है विशुद्ध तैरते हुए स्वयं अपनी शोणित धारा में क्या जाने हम किस अदृश्य के बीच पहुंच जाते हैं। शब्दार्थ आलोड़न यानी उमड़ना, निगूढ़ यानी गहन, बेकली यानी बेचैनी, विलय यानी लीन, अंतराल यानी हृदय, विशुद्ध यानी बेसुद्ध। व्याख्या। और फिर दो प्राणों की ध्वनियों का गहन संघर्ष, एक दूसरे में लीन कर देने की उसकी वह बेचैनी, खून का वह उफान, हड्डियों में चिंगारी का फूटना और त्वचा का पुलकित होकर स्वयं प्रकाशित हो उठना, मानव शरीर के अंधकार की परतें एक एक कर नष्ट होती जा रही हैं, मन का किसी आकाश के अंतर में, किसी महासागर में डूब कर निश्चल समाधि के सुख में खो जाना आदि, मेरे विगत प्रेम की स्मृतियाँ कितनी विकल कर देने वाली हैं। सुकन्या, धरती का यह प्रभावपूर्ण प्रेम कितना दिव्य है, कितना गहरा है। अपने उत्तेजना की धारा में बेसुध होकर स्वयं तैरते हुए न जाने हम किस अदृश्य लोक में पहुंच जाते हैं। यह प्रदीप्त आनंद कहाँ सुरपुर की शीतलता में, पारिजात द्रुम के फूलों में कहाँ आग होती है, यह तो यही मर्त जगती है जहाँ स्पर्श के सुख से अंधकार में प्रभावपूर्ण वातायन खुल पड़ते हैं। जल उठती है प्रणय वहनी वैसे ही शांत हृदय में, जो निद्रित पाषाण जागकर हीरा बन जाता है। शब्दार्थ। मर्त जड़ती यानी मरण धर्मा पृथ्वी, वातायन यानी झरोखा, प्रणय वहनी यानी प्रेम की आग, पाषाण यानी पत्थर। व्याख्या। धरती का यह अलौकिक आनंद भला इंद्रलोक की शीतल प्रशांत प्रकृति में कहाँ संभव है। पारिजात के पुष्पों में काम की आग ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। यह तो मर्त लोक ही है जहाँ पर स्पर्श के सुख से अंधकार में भी आलोकवान झरोखे खुल पड़ते हैं। शांत हृदय में प्रेम की आग उसी प्रकार जलने लगती है जैसे सोया हुआ पत्थर जाग कर हीरा बन जाता है। किंतु हाय रे, नश्वरता इन अतुल अमेय सुखों की, अमर बनाकर उन्हें भोगना मुझको भी दुष्कर है। यद्यपि मैं निर्जर अमर्त शाश्वत पीयूषमयी हूँ, भरत शाप जाने आकर कितना अदूर ठहरा है। घात लगाए हुए एक ही आकस्मिक झटके में पृथ्वी से मेरा सुखमय संबंध काट देने को। शब्दार्थ। अमेय यानी अपरमित, निर्जर यानी बुढ़ापे से रहित, अमर्त यानी अमर, पीयूषमयी यानी अमृतमयी, अदूर यानी निकट समीप, घात यानी दांव, आकस्मिक यानी सहसा आने वाले। व्याख्या। किंतु दुख है किन अतुल अपरिमेय सुखों की नश्वरता को अमरता में बदलकर भोगना मेरे लिए भी कठिन है। यद्यपि मैं जराहीन स्वर्गिक अमर एवं अमृतमयी अप्सरा हूँ, भरत का शाप न जाने मेरे कितने समीप एक ही आकस्मिक झटके में पृथ्वी से मेरा सुखमय संबंध छिन्न कर देने के लिए दांव लगाए बैठा है। जो भी करूं सखी, पर वह दिन आने ही वाला है, छिन जाएगा जब समस्त सौभाग्य एक ही क्षण में। उड़ जाऊंगी छोड़ भूमि पर सुख समस्त भूतल का, जैसे आत्मा देह छोड़ अंबर में उड़ जाती है। हाय, अंत में मुझ अभाग्नी शापग्रस्त नारी को न तो प्राण प्रिय पुत्र न तो प्रियतम मिलने वाले हैं। व्याख्या। हे सखी, चाहे मैं कुछ भी क्यों न करूं, पर वह दिन तो अब आने ही वाला है जब मेरा सारा सौभाग्य कहीं क्षण में छिन जाएगा। मैं पृथ्वी के सारे सुखों को छोड़कर यहाँ से उसी प्रकार उड़कर चली जाऊंगी जिस प्रकार आत्मा शरीर को छोड़कर अंबर में उड़ जाती है, और अंत में मुझ शापित अभाग्नि नारी को न तो प्राणों से प्रिय पुत्र ही मिल सकेंगे और न ही मेरा प्रियतम से मधुर मिलन ही हो सकेगा। चित्रलेखा। भरत शाप दुस्सह दुरंत कितना कटु दुखदायी है, क्षण क्षण का यह त्रास सखी कब तक सहती जाओगी, उस छागी सी सतत भीत कंपित जिसकी ग्रीवा पर यम की जिह्वा के समान खर छुरिका झूल रही हो। दुस्सह असहनीय, दुरंत यानी भयंकर, छागी यानी बकरी, खर यानी तीक्ष्ण, छुरिका यानी छुरी। प्रसंग। भरत के शाप की दुस्सह कल्पना से चित्रलेखा के हृदय में उर्वशी के प्रति भयजन्य कारुण्य की लहर कौन जाती है और वह उर्वशी के दुर्लित भाग्य के प्रति शोक प्रकट करती है। व्याख्या। प्रिय सखी, भरत का असहनीय भयाक्रांत अभिशाप कितना दुखदायी एवं कटु है। प्रत्येक क्षण इसके भय को उस बकरी की तरह आखिर तुम कब तक सहरी जाओगी जिसके भय से निरंतर रूप से कांपती हुई गर्दन पर यमराज की जीव के समान तीक्ष्ण छुरी झूल रही हो। शिशु को किसी भांति पहुंचाकर प्रिय के राजभवन में, अच्छा है तुम लौट चलो आज ही रात सुरपुर को। माना नहीं उपाय शाप से कभी त्राण पाने का, पर उसके भय की प्रचंडता से तो बच सकती हो, और अप्सरा संततियों का पालन कब करती है। शब्दार्थ। सुरपुर यानी इंद्रपुरी। व्याख्या। आयु को किसी तरह अपने प्रियतम पुरुरवा के राजमहल में पहुंचाकर तुम आज ही रात को यदि इंद्रपुरी लौट चलो तो अधिक श्रेयस्कर है। ठीक है कि शाप से छूटने का कोई उपाय नहीं है, किंतु ऐसा करने से तुम उसके भय की दाहकता से तो बच जाओगी और अप्सराएं अपनी संतानों का पालन करती ही कब। उर्वशी, यूं बोलो मत सखी, भूमि के अपने अलग नियम हैं। सुख है जहाँ वहीं दुख वातायन से झांक रहा है, यहाँ जहाँ भी पूर्ण स्वरस है वहीं निकट खाई में दांत पजाती हुई घात में छिपी मृत्यु बैठी है। जो भी करता सुधा पान उसको रखना पड़ता है, एक हाथ रस के घट पर दूसरा मरण ग्रीवा पर, फिर मैं ही क्यों उसे छोड़ दूँ। भीत अनागत भय से आयु रहेगा यही, दूसरी कोई राह नहीं है। शब्दार्थ वातायन निखिर की झरोखा, स्वरस यानी सुरस, पजाती यानी किटकिटाती, अनागत यानी भविष्य। प्रसंग, चित्रलेखा के यह कहने पर कि उर्वशी शाप के भय से बचने के लिए पृथ्वी से पलायन कर स्वर्ग को लौट जाए तो अच्छा है, उर्वशी पृथ्वी के सुख दुख में समन्वित एवं शाश्वत नियम की ओर उसका ध्यान आकृष्ट किया चाहती है। यहाँ यानी धरती पर अमृत और गरल, फूल और कांटे, दुख तथा सुख सबका एक साथ वर्णन करना पड़ता है, अतः अनागत दुखों की आशंका से भयभीत होकर उर्वशी भागना नहीं चाहती। व्याख्या, हे सखी ऐसा मत कहो, पृथ्वी के अपने अलग नियम हैं। यहाँ जिस जगह सुख होता है उसकी जगह दुख भी झरोके से झांका करता है। जहाँ मनुष्य को मधुमेह रस का पूर्ण स्वाद मिलता है, वहाँ पास की खाई में छिपकर बैठी हुई मृत्यु अपना दांव लगाए दांत पीसती रहती है। यहाँ जो भी अमृत का पान करना चाहता है उसके एक हाथ रस के घड़े पर और दूसरा मौत की गर्दन पर रखना पड़ता है। जब इस धरती का नियम ही ऐसा है तो फिर मैं ही भविष्य के भय से भयभीत होकर इस धरा को क्यों छोड़ दूँ। अतः प्रिय पुत्र आयु यहीं रहेगा, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग इसका नहीं है। सुकन्या, चित्रे सखी उचित कहती है, इस निरीह पैमुख को अभी भेजना नहीं निरापद होगा राजभवन में। रानी इतनी भी उदार कुलपाली दयामयी हो, विमातृत्व का हम वामा विश्वास नहीं करती हैं। दो उर्वशी, इसे मुझको दो, मैं इसको पालूंगी। शब्दार्थ, निरीह यानी भोले, पैमुख यानी दुधमुहा, निरापद यानी आपत्ति रहित, कुलपाली यानी कुल को पालने वाले, विमातृत्व यानी विमाता, वामा यानी त्रे। व्याख्या, चित्रलेखे उर्वशी ठीक कहती है, इस भोले तथा दुधमुहे आयु को अभी से राजभवन में भेज देना आपत्तिहीन नहीं होगा। रानी चाहे जितनी भी उदार कुल को पालने वाली तथा दयावती क्यों न हो, हम स्त्रियां विमाताओं का विश्वास नहीं करती हैं। उर्वशी, तुम आयु को मुझे दो, इसका पालन पोषण मैं करूँगी। उर्वशी को गोद से आयु को ले लेती है और उसे पुचकारते हुए बोलती जाती है, यह आश्रम की ज्योति इंदु नन्हा स्पर्ण कुटिका, सखी तुम्हारा लाल हमारी आंखों का तारा है। घुटनों के बल दौड़ दौड़ में ना मेरा मुन्ना पकड़ेगा, कभी हरण के कान कभी डैने कपोत के कीके, और खड़ा होकर चलते ही बड़ी रार रोपेगा, शशको गिलहरियों प्लवंग शिशुओं कुरंग छौनों से, फिर कुछ दिन में और तनिक बढ़कर प्रतिदिन जाएगा, होम धेनुओं को लेकर गोचर अनुकूल विभिन्न, और सांझ के समय चराकर उन्हें लौट आएगा, सिर पर छोटा बोझ लिए कुछ दर्भ और समिधा का, फिर पवित्र होकर महर्षि के साथ यज्ञ वेदी पर बैठ हमारा लाल मंत्र पढ़ पढ़कर हवन करेगा। हवन धूम से आंखों में जब वाष्प उमड़ आएंगे, तब मैं दोनों नयन पोंछ दूंगी अपने अंचल से, शस्त्र शास्त्र निष्णात अंग से बलि विभासित मन से, जब अपना यह आयुपूर्ण कैशोर प्राप्त कर लेगा, पहुंचा दूंगी स्वयं इसे ले जाकर राजभवन में। तब तक जा पीयूष पान कर तू मृणमयी मही का, चिंता रहित अशंक आयु को कोई त्रास नहीं है। शब्दार्थ, इंदु यानी चंद्रमा, डैने यानी पंख, कपोत केकी यानी कबूतर और मोर, रार यानी झगड़ा, रोपेगा यानी करेगा, शशकों यानी खरगोशों, प्लवंग यानी खग पक्षी, कुरंग छौनों यानी हिरण के बच्चों, होम धेनु यानी यज्ञ की गायें, गोचर अनुकूल यानी चारागाह की योग्य, समिधा यानी यज्ञ की सामग्री, शस्त्र शास्त्र निष्णात यानी शास्त्र तथा शस्त्रों में प्रवीण, कैशोर यानी यौवन, पीयूष यानी अमृत, मृणमयी यानी मिट्टी वाली। व्याख्या, हे सखी, यह तुम्हारा पुत्र आयु इस आश्रम की ज्योति है, इस पर्णकुटी का नन्हा सा चंद्रमा है और हमारी आंखों का तारा है। यह मेरा मुन्ना घुटनों के बल दौड़ दौड़ कर कभी हिरण के कानों को पकड़ेगा और कभी कबूतर या मोर के पंखों को। जब यह खड़ा होकर चलने लगेगा तो सुंदर खरगोशों, गिलहरियों, खगशावकों तथा बाल मृगों के साथ हठपूर्वक झगड़ा करेगा। फिर कुछ दिन में और तनिक बड़ा होकर यह यज्ञ की गायों को लेकर गऊओं के चरने योग्य जंगल में प्रतिदिन जाया करेगा। फिर कुछ दिन में और तनिक बड़ा होकर यह यज्ञ की गायों को लेकर गऊओं के चरने योग्य जंगल में प्रतिदिन जाया करेगा और सांझ के समय उन्हें चराकर सिर पर छोटा सा कुशा, दाव तथा समिधा का गट्ठा लेकर लौट आएगा। फिर पवित्र होकर महर्षि चेवन के साथ यज्ञ की वेदी पर बैठकर हमारे यह लाल मंत्रोच्चारण कर हवन किया करेगा। हवन के धुएं से जब उसकी आंखों में आंसू उमड़ जाएंगे तब मैं अपने आंचल से उसके दोनों नयन पोंछ दूंगी। शस्त्र और शास्त्रों के प्रयोग में प्रवीण, शरीर से बलिष्ठ, मन से प्रभायुक्त जब यह अपना पुत्र यौवन को प्राप्त कर लेगा तब मैं इसे स्वयं राजभवन में पहुँचाऊंगी। तब तक तुम उर्वशी जाकर मर्त धरती के अमृत का निश्चिंत तथा संदेह रहित होकर पान करो। आयु को अब किसी प्रकार का भय नहीं होने पाए। ठीक ठीक है सर। उर्वशी, तो मैं चली, यानी उर्वशी कहती है तो मैं जा रहे हैं। सुकन्या, कहाँ? बंधने को प्रिय के आलिंगन में। सुकन्या, कहाँ जा रही हो? क्या तुम प्रिय के आलिंगन पास में बंधने के लिए तो नहीं जा रही हो? उर्वशी, उस बंधन में तो अब केवल तन ही बंधा करेगा। प्राणों को तो यहीं तुम्हारे घर छोड़े जाती हूँ। पुत्र और पति नहीं, पुत्र या केवल पति पाओगी। सखी सत्य ही ए विकल्प दारुण दुरंत दुस्सह, अब मत डाले भाग किसी को ऐसी कठिन विपद में। शब्दार्थ विकल्प यानी विचार, दारुण यानी भयंकर। व्याख्या, राजा के आलिंगन पाश में तो केवल शरीर ही बंधने को शेष रह गया है, क्योंकि मेरे प्राण तो आयु के ही जीवन से लिपटे हैं, जिन्हें मैं यहीं तुम्हारे घर छोड़कर जा रहे हैं। मैं पुत्रों और पति दोनों को नहीं, अपितु इनमें से केवल एक को ही प्राप्त कर सकती हूँ। भरत का यह श्राप वास्तव में बड़ा भयंकर है। इसकी कल्पना मात्र ही भयंकर एवं असहनीय है। आगे से किसी का भाग्य किसी को भी ऐसी घोर विपत्ति में न डाले। उर्वशी और चित्रलेखा का प्रस्थान। चौथा अंक यहीं पे खत्म होता है।